ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में हुए शरीक। आज ही प्रधानमंत्री करेंगे सम्मेलन का संबोधन। प्रदेश नंबर एक के मुख्यमंत्री भीम आचार्य ने दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी के राजेन्द्र राय ने पेश किया दावा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने की बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमे की सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग करते हुए नेपाल बार एसोसिएशन के अगुवाई में न्यायाधीशों ने किया विरोध प्रदर्शन। और भारत बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान। 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू जलवायु परिवर्तन संबंधी विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में शरीक हुए हैं। प्रधानमंत्री देउवा आज ही सम्मेलन का संबोधन भी करेंगे। दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री देउवा अपने समकक्षी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय भेंटवार्ता करेंगे। इसी तरह श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री देउवा मुलाकात करेंगे। साथ ही विश्व बैंक IMO और UKMOD के पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश नंबर एक के मुख्यमंत्री पद के लिए नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता राजेंद्र राय ने 50 सांसदों के हस्ताक्षर सहित अपना दावा पेश किया है। नेता राय ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा और लिम्बुआन कर कुल 50 सांसदों समेत मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश किए। ये जानकारी नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद झलक सिंह दरलामी ने दी। नेता राय ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी समक्ष नई सरकार गठन के लिए दावा पेश किया। मुख्यमंत्री भीम आचार्य द्वारा इस्तीफा पेश किए जाने के बाद प्रदेश प्रमुख अधिकारी ने कल मंगलवार 1 बजे तक नई सरकार गठन के लिए दावा पेश करने का आह्वान किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज पेशी के लिए तय किए गए सभी मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई है। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा ने सोमवार के लिए 4 संयुक्त और 2 एकल इजलास तय किए थे। न्यायालय में सुधार की मांग करते हुए 8 दिनों से न्यायाधीशों ने बेंच का बहिष्कार किया था। नेपाल बार एसोसिएशन की अगुवाई में प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा की इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर में आज भी कानून व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन किए। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में पार्टी एकल बहुमत शामिल करेगी। नेकपा एमाले भरतपुर महानगर कमेटी के प्रथम महानगर अधिवेशन में आज अध्यक्ष ओली ने कहा कि बिना किसी गठबंधन के एमाले बहुमत लाएगी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा कि कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन की कार्यतालिका में अब किसी भी हालात में फेरबदल नहीं होगा। नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा द्वारा आज जनकपुर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता पौडेल ने कहा कि मार्ग शीर्ष 24 से 26 गते तक में ही महाधिवेशन संपन्न होगा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि पार्टी द्वारा आत्मसात किए गए विचार, नीति और कार्यक्रम के कारण माओवादी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है। आज माओवादी केंद्र कीर्तिपुर नगर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। ये बताते हुए कि संविधान को लेकर कुछ मतभेद होते हुए भी पार्टी ने संविधान जारी किया था। उन्होंने कहा कि अनुकूल समय में संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि देश को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। आज सुनसरी के बाराह क्षेत्र में आयोजित कोसी पीड़ित सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बास व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कार्की ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश की समृद्धि में है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
14-15
बजारमा नयाँ कि छैन।
नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा स्टार 14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415# गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
चौध पन्ध्र। मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। नेपाली सेना और अमेरिकी सेना के बीच आपदा व्यवस्थापन संबंधी संयुक्त अभ्यास एक्सटिक नेपाल 2022 आज से शुरू हुआ। सेना की छावनी स्थित रेंजरगण में शुरू हुए संयुक्त अभ्यास में खोज और उद्धार कार्य में संलग्न होने वाले नेपाली सेना के 50 और अमेरिकी सेना के 20 सैनिकों की सहभागिता है। मार्गशीर्ष 14 गते तक चलने वाले संयुक्त अभ्यास के दौरान काठमांडू, पोखरा और अन्नपूर्णा बेस कैंप इलाके में तालीम होगी। भारत होते हुए अफगानी नागरिक नेपाल आ सकने के खतरे के मद्देनजर नेपालगंज स्थित जमुनाह नाका पर उच्च सतर्कता अपनाई गई है। नेपालगंज नाका से अफगानी नागरिक लगायत अन्य कोई भी शंकास्पद व्यक्ति न आ पाए, इसलिए सुरक्षाकर्मी को कड़ाई के साथ निगरानी करने का निर्देशन दिया। ये जानकारी बांकी के प्रमुख जिला अधिकारी सूर्य खत्री ने दी। आज देश भर में कोरोना के 533 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह आज 490 संक्रमित संक्रमण मुक्त हुए हैं और 9 संक्रमितों की मौत हो गई। इसी बीच मालदीव से कोरोना वायरस विरुद्ध के एस्ट्राजेनिका डोज नेपाल आ पहुंची है। बता दें कि मालदीव सरकार ने नेपाल को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराए 2,01,600 वैक्सीन का डोज कल रात काठमांडू आ चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को 10 तो 1 को 7 वर्ष की सजा दी गई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नमूना अंसारी और मुजीबुल्ला अंसारी को फांसी दी गई है। 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से पहुंचे गांधी मैदान और जंक्शन में हुई बर्दात में 6 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद उस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 9 को मामले में दोषी और 1 को बरी कर दिया गया था। एक अभियुक्त नाबालिग था जिसे पहले ही 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। जांच के दौरान आतंकियों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ा था। रायपुर में ही 2 आतंकियों की मुलाकात हुई थी। आतंकियों का एक प्लान यह भी था कि अगर वे कामयाब नहीं भी हुए तो सभा में सीरियल ब्लास्ट कर भगदड़ मचा देंगे। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब तक 187 लोगों को कोर्ट में गवाही कराई गई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में हुए शरीक। आज ही प्रधानमंत्री करेंगे सम्मेलन का संबोधन। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री भीमाचार्य ने दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी के राजेंद्र राय ने पेश किया दावा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने की बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमे की सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग करते हुए नेपाल बार एसोसिएशन के अगुवाई में न्यायाधीशों ने किया विरोध प्रदर्शन। और भारत बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान, 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।